नमस्कार भारत, तारीख 25 फरवरी दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमेरिका के कैंसस में भारतीय इंजीनियर की मौत पर ट्रंप प्रशासन ने जताया दुख, लेकिन कहा हमले को राष्ट्रपति के बयान से जोड़ना ठीक नहीं। मृतक की पत्नी बोली, उत्तर प्रदेश में आज थमेगा पांचवें दौर के चुनाव का प्रचार और विवेचना में सुनिए सुरक्षा बलों ने 20 साल तक मुश्किल बने रहे चंदन तस्कर वीरप्पन को किस तरह घेरा था।
गोविंदन का फायर था पहले, फिर हमने दोबारा वार्निंग किया, फिर शुरू कर दिया। टोटल पीरियड इज नॉट मोर देन 15-20 मिनट, इसलिए मैंने कहा 20 साल का हंट 20 मिनट के अंदर कम्प्लीटली खत्म हो गया।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। ट्रंप प्रशासन ने कैंसस प्रांत में भारतीय इंजीनियर की मौत पर बयान देते हुए कहा है कि कोई भी मौत दुखद होती है, लेकिन इस मामले को ट्रंप के बयानों से जोड़ना हास्यास्पद है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर का ये भी कहना था कि इस हमले का मकसद क्या था, उस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं मारे गए इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला की पत्नी सुनैना ने एक प्रेस वार्ता कर कहा है कि वो सरकार से जवाब चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि वो ऐसे हेट क्राइम को रोकने के लिए क्या करने वाली हैं। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित दीवार के डिजाइन और निर्माण के लिए अगले महीने से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। वहीं कस्टम और सीमा सुरक्षा का काम देखने वाली एजेंसी का कहना है कि दीवार पर बैरियर लगाने के ठेके अप्रैल तक दे दिए जाएंगे। शुक्रवार को अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि दीवार बनाने का काम निर्धारित समय से बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
For too long we've traded away our jobs to other countries. So terrible.
लंबे समय से हम अपनी नौकरियां दूसरे देशों को देते रहे हैं। हमने दूसरे देशों की सीमा सुरक्षित की है, जबकि अपनी सीमाओं को खुला छोड़ दिया है। कोई भी आ सकता है। हम दीवार बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में चिंता मत कीजिए। हम ये दीवार बना रहे हैं। वास्तव में इसका काम बहुत जल्द शुरू हो रहा है, निर्धारित समय से बहुत पहले, बहुत बहुत पहले। ये थे राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि इस दीवार पर करीब $12 अरब तक का खर्च आ सकता है, लेकिन एक लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक ये खर्च दोगुना तक बढ़ सकता है और दीवार के निर्माण में 3 साल तक का समय लग सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस वार्ता से बीबीसी समेत कई मीडिया संस्थानों को बाहर किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC और लॉस एंजलिस टाइम्स समेत कई अन्य मीडिया संस्थानों को राष्ट्रपति ट्रंप के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर की प्रेस वार्ता में शामिल नहीं होने दिया गया। जब इसका विरोध किया गया तो स्पाइसर ने कहा कि वो गलत तथ्यों, झूठी खबरों और झूठे नजरियों को नहीं चलने देंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक डीन बैकवे का कहना है कि अखबार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके पत्रकार को इस तरह बाहर किया गया हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शी सरकार तक स्वतंत्र मीडिया की पहुंच राष्ट्रीय हित में बेहद अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप कुछ मीडिया संस्थानों को देश का दुश्मन कह चुके हैं। वो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर झूठी खबरें चलाने के आरोप भी लगा चुके हैं। फ्रांस में अभियोजकों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फिलॉन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच आगे बढ़ा दी है। फ्रांसवा फिलॉन पर अपनी पत्नी और बच्चों को बिना काम के भुगतान जारी करने के आरोप हैं। जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है और इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है। रूस ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सीरियाई सरकार पर रासायनिक हमले करने के लिए लगाए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिबंधों को वीटो करेगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के डिप्टी राजदूत व्लादिमीर सेफ्रानकोफ ने कहा है कि ऐसा प्रस्ताव उकसावे की कार्रवाई होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि सीरियाई सरकार कम से कम 3 रासायनिक हमलों के पीछे थी। इस रिपोर्ट के बाद से फ्रांसीसी राजनयिक प्रतिबंध तैयार कर रहे हैं। सीरियाई सरकार रासायनिक हमलों को नकारती रही है। वहीं सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जिनेवा में वार्ता जारी है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं लाइव। मैं हूं वात्सल्य राय। आज खबरों में बात होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, सुनवाएंगे आपको विवेचना भी और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रिश्ते किस मोड़ पर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमरीका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुची वोतला की मौत की। श्रीनिवास अमरीका के कैंसस राज्य के ओलेज शहर में काम करते थे। अमरीकी वक्त के मुताबिक बुधवार शाम को वो एक रेस्टोरेंट में थे, तभी एक हमलावर की ओर से की गई गोलीबारी में वो घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस हमले में एक अन्य भारतीय आलोक मदासानी भी घायल हो गए। अमरीकी मीडिया और सोशल मीडिया में कई लोगों ने इस हमले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रवासियों के खिलाफ दिए गए बयानों से प्रेरित बताया है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने अभी तक इसे नस्लवादी हमले की श्रेणी में नहीं रखा है। उधर ट्रंप प्रशासन ने घटना पर दुख तो जताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इसे राष्ट्रपति के बयान से जोड़ना हास्यास्पद होगा। इस बीच श्रीनिवास की पत्नी सुनैना ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा,
As much as I know my husband, he would want the justice to be done.
जितना मैं अपने पति को जानती थी उन्हें न्याय की अपेक्षा होती और मुझे भी सरकार से जवाब चाहिए। मुझे उन सभी से जवाब चाहिए कि वो इस हेट क्राइम को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। सरकार को ये तय करना चाहिए कि मैं इस देश में वापस आ सकूं और अपने पति के सपने को पूरा कर सकूं। वो मुझे कामयाब देखना चाहते थे और मुझे ये सपना पूरा करना है। ये थे श्रीनिवास की पत्नी सुनैना के शब्द। आप शब्दों में उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने भारतीय कौंसुल जनरल अनुपम रे से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस मामले में अब तक भारतीय अधिकारियों ने क्या कुछ किया है।
हमारी टीम वहां तुरंत पहुंची। कल जब हमें पता चला कि शूटिंग हुआ है, तो कुछ ही घंटों के अंदर हम अपने ऑफिसर्स को वहां भेज दिया, वो पहुंच गए। तो हम सबसे पहले आलोक से मिले। आलोक वाज इंजर्ड, उनको गोली लगी थी, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर और अभी घर में है। हमने उनको ये अश्योरेंस दिया है कि उनको जो भी मदद चाहिए हम उनको देंगे। और आज सुबह कौंसल रविंद्र जोशी, उन्होंने ही मेट इनके विडो से, श्रीनिवास कुची बोटला जी के विडो से, सुनैना कुची बोटला जी, उनसे भी हमने बात किया है और हमने उनको एश्योर किया है कि उनको जो भी मदद चाहिए हम वो मदद देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल हमें ये पता चल रहा है कि कल या परसों, एक्चुअली ना, वो उन दोनों गए थे एक रेस्टोरेंट में। जब वो रेस्टोरेंट में थे, जो एक एल्डरली वाइट मेल आए थे अंदर और अग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे, तो उन्होंने मैनेजर से कंप्लेन किया। तो मैनेजर एस्कॉर्टेड इनको बाहर, एस्कॉर्ट करके ले गए। 15 मिनट बाद ये अंदर आए और उनके साथ ही हैड अ फायरआर्म, तो गोली चलाई, तो उसमें श्रीनिवास कुची बोतला डाइड एंड आलोक इज आउट ऑफ डेंजर, अब घर में है। So that is the situation. हमारे ऑफिसर वहाँ पे है, we are helping them. हम कम्युनिटी को reassure भी कर रहे हैं कि हमारे हाईएस्ट लेवल से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मैडम सुषमा स्वराज ये पर्सनली मॉनिटर कर रही है, तो एम्बेसडर साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम वी आर देयर टू हेल्प। जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे।
और आलोक से जब आपकी बात हुई, कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह की बातें वो कह रहा था जो हमलावर जो था?
जो न्यूज़पेपर्स में जो मीडिया में रिपोर्ट किया गया, वो बाय एंड लार्ज ही कंफर्म दैट, बट उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो गेस्ट थे उस बार में, दे आल्सो प्रोटेस्टेड।
और लोकल पुलिस से आपकी कोई बात हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसको हेट क्राइम के की श्रेणी में नहीं रखा है?
लोकल पुलिस कौंसल रविंद्र जोशी इज राइट नाउ, जब हम बात कर रहे हैं, ही इज मीटिंग द लोकल पुलिस राइट नाउ, उसके बाद हमें पता चलेगा। बट व्हाट आलोक टोल्ड मी एंड उनके जो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स जिनसे मैंने बात किया है, उन्होंने ये कहा कि लोकल लॉ एनफोर्समेंट हैज बीन हेल्पफुल।
और जो श्रीनिवासन हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी बॉडी को इंडिया में भेजने के लिए किस तरह की आप लोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं?
उनका बॉडी अभी भी फ्यूनरल होम में है, उनका डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है और डेथ सर्टिफिकेट के बाद एक और कुछ और पेपर्स चाहिए, जैसे कि एम्बामिंग सर्टिफिकेट, वो सब मिलने के बाद हम तुरंत अपने फॉर्मेलिटीज को हम ऑन द स्पॉट कर देंगे।
और एक आखिरी सवाल, श्रीनी की जो वीडियो है उनका जिक्र किया आपने, किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ मिस्टर जोशी का उनके साथ, क्या बातें हुई कुछ जो आप हमसे शेयर कर सके?
जी, मैंने भी बात किया उनसे, जोशी साहब तो वहाँ है अभी भी, सो शी इज ऑब्वियसली डिस्ट्रॉट एंड शी इज ग्रीविंग, but her brother-in-law is there, the late Srinivas Kuchivotla's brother ڈالس میں رہتا ہے, وہاں سے 500 میل دور, تو ہی از دیئر اینڈ ان کا کافی اسٹرانگ فیملی اور کمیونٹی نیٹورک ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا امیڈیٹ کیا پرائیورٹیز ہے, تو شی سیڈ بتایا انہوں نے کہ دیٹ دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو کم ٹو ٹرمز وتھ واٹ ہیز ہیپنڈ. اس کے بعد جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے.
یہ تھے بھارتیہ کونسل جنرل انوپم رے, اور ان سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواددتا برجیش اپادھیائے.
بی بی سی انڈیا بول.
بھارتی وشودیالے وام پنتھ اور دکشن پنتھ کی لڑائی کا اڈا کیوں بن رہے ہیں؟ کیا دلی وشودیالے کے رامجس کالج میں چھاتر سنگٹھنوں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ اس اور اشارہ نہیں کرتی؟ یہی ہے اس بار بی بی سی انڈیا بول میں چرچا کا وشے. کارکرم میں حصہ لینے کے لیے اس شنیوار 25 فروری کو شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811 7000 یا 1800 102 7001 پر.
بی بی سی انڈیا بول.
رخ بھارت کا. اتر پردیش میں ودھان سبھا چناؤ کے 5ویں چرن کا پرچار آج شام تھم جائے گا. 5ویں چرن میں 27 فروری کو 52 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. جن 9 ضلعوں میں چناؤ ہونا ہے ان میں گونڈا, سلطان پور, امیٹھی اور بہرائچ اہم ہے. ہمارے سہیوگی سمیر آتمج مشر زمینی استھتی کا جائزہ لینے کے لیے بہرائچ میں ہے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں. سمیر جی, پرچار زوروں پر ہے, مکھیہ مقابلہ کن دلوں کے بیچ میں ہے اس چھیتر میں؟
جی واتسلیہ, مکھیہ مقابلہ جیسا کہ اتر پردیش میں کہہ سکتے ہیں آپ کی ودھان سبھا کی ساری سیٹوں پہ اور سارے جگہوں پہ تین میں ہے. بھارتی جنتا پارٹی ہے, بہوجن سماج پارٹی, سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا گٹھ بندھن, ان تینوں کے بیچ مقابلہ یہاں بھی ہے لگ بھگ سبھی سیٹوں پر. کچھ جگہوں پہ کچھ نردلی پرتیاشی بھی ایسے ہیں جو کہ دمخم لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی پارٹیاں بھی ہیں, لیکن اگر جو مکھیہ مقابلے کی بات کی جائے تو یہی تین پارٹیاں ہیں.
امیٹھی میں سمیر جی ساکھ کی بھی لڑائی ہوگی. ریلیوں میں میں دیکھ رہا ہوں بھیڑ تو کافی دکھ رہی ہے, نیتاؤں کے بیانوں پر تالیاں لیکن کچھ کم سنائی دے رہی ہیں. کیا متداتاؤں کا اتساہ جو ہے کچھ گھٹ رہا ہے یا پھر اصل مدوں پر بات نہیں ہونے سے وہ مایوس ہیں؟
نہیں, آپ نے صحیح سوال کیا. متداتاؤں کے اتساہ کی جو بات ہے, تو اتساہ کا جو اتساہ دکھنے والی بات ہے یہ بھی مشرت روپ میں دکھائی پڑ رہا ہے. کچھ جگہوں پہ تو کافی زیادہ اتساہ ہے, لیکن اور کئی پولنگ بوتھوں پہ جہاں چناؤ ہو چکے ہیں ان جگہوں پہ جب ہم گئے تو کچھ ایک پولنگ بوتھ تو ایسے ملے تھے کہ جہاں 2-4 لوگ بھی ووٹ ڈالنے اس سمے نہیں آئے ہوئے تھے. تو اتساہ لوگوں میں کچھ جگہوں پہ ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہے. اب یہاں کتنا اتساہ ہے متداتاؤں میں, کیونکہ پرچار کاریہ میں اتنی بندشیں ہیں, اتنے طریقے سے چناؤ آیوگ نے سختی کر رکھی ہے, تو وہ بہت زیادہ ویسے بھی نہیں دکھ رہا ہے. لیکن جو ریلیاں ہو رہی ہیں, ریلیوں میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور ریلیوں میں لوگ اپنے طریقے سے پہنچ رہے ہیں, تو اس سے اتساہ کا اندازہ تو نہیں لگ سکتا ہے. اندازہ اتساہ کا صحیح ہوئے تبھی لگے گا جب یہاں پہ متداتا متدان کرنے آئیں گے.
جی, آج پرچار کا آخری دن ہے, آپ نظر رکھیے, ہم اگلے کاریکرموں میں پھر آپ سے بات کریں گے. سیاسی گرمی مہاراشٹر میں بھی ہے. استھانیہ نکائے چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد وہاں کی راجنیتی دلچسپ ہو گئی ہے. ممبئی میں پی ایم سی چناؤ کے پہلے شیو سینا نے دعویٰ کیا تھا کہ چناؤ میں گٹھ بندھن نہیں ہونے سے بی جے پی کو زیادہ نقصان ہوگا, لیکن نتیجے بتاتے ہیں کہ بی جے پی کو اکیلے چناؤ لڑنے کا فائدہ ملا. اس بارے میں بی بی سی سنواددتا سلمان راوی نے ممبئی فرسٹ پورٹل کے سی او ششر جوشی سے بات کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ کیا یہ دونوں پارٹیاں ساتھ چلیں گی یا پھر ان کے راستے الگ ہوں گے.
اتنے سمے سے یہ دھمکی چل رہی ہے, اور اگر دھمکی اگر واستوکتا میں پریورتت نہیں ہوتی ہے تو دھمکی کا اثر کم ہوتا ہے. لیکن ایک بات آپ اگر سمجھیں گے کہ شیو سینا جو ایک طرح سے راشٹریہ پارٹی کی حیثیت کلیم کرتی ہے, وہ اتنی راشٹریہ نہیں ہے, وہ ایک ریجنل پارٹی ہے. بالا صاحب ٹھاکرے یہ اگر اس بات سے ناراض ہوتے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ان سے ایک اسٹیپ بردر جیسا ٹریٹمنٹ کرتی ہے, اس طرح کا ماحول ہوتا تو بالا صاحب ٹھاکرے کبھی دھمکی نہیں دیتے, وہ ترنت فیصلہ لے لیتے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ ادھو ٹھاکرے آج کچھ بات کہیں گے, پھر کچھ بات کہیں گے.
یہ جو ان کا الائنس ہوا تو اس کا جو ہے فائدہ کیا لگتا ہے آپ کو, کس کو ہوا زیادہ, بی جے پی کو ہوا یا شیو سینا کو ہوا؟
فائدہ ابھی تک دونوں کو ہوا تھا, لیکن اب سمبھاونا یہ ہے کہ نقصان ضرور شیو سینا کو ہوگا, کیونکہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے مہاراشٹر کے جتنے جو لوکل باڈی الیکشن تھے 10 میں سے 9 جگہ پر اپنا قبضہ کر لیا ہے, اور یہ اس کا فائدہ ان کو 2 سال بعد جو مہاراشٹر کے اسمبلی اسٹیٹ لیول الیکشن ہوں گے اس میں ضرور ہوگا, کیونکہ یہ سبھی جو لوکل باڈیز ہیں وہ اپنے اپنے پارٹی کے لیے کیمپین کرے گی.
لیکن اب تو آثار لگ رہے ہیں کہ دونوں کے بیچ سمجھوتا ہو جائے گا ایسا لگتا ہے.
یہ आसार तो नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मैं कहूंगा कि देखिए 84 सीटें शिवसेना को मुंबई में मिली है, यानी उनको 84 से 114 जो मैजिक फिगर का आंकड़ा है मुंबई के लिए, जितनी उनको ताकत लगानी है उतनी ही बीजेपी को भी लगानी होगी, तो 82 है।
शिवसेना कहाँ से नंबर जुगाड़ कर सकती है?
बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे शिवसेना के एक नेता ने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा, फ्लोर मैनेजमेंट। फ्लोर मैनेजमेंट पहले हम उसे हॉर्स रीडिंग कहते थे, लेकिन अब इसे फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता है। कि फ्लोर मैनेजमेंट में संभावना यह है कि देखिए कांग्रेस हालांकि 30 सीटें आई हैं, जरूरी नहीं कि 30 की 30 एक साथ एक जगह जाएं। उसमें भी अब कांग्रेस में इतनी फूट आ गई है कि कांग्रेस के जो लोकल लीडर थे जिन्होंने नेतृत्व किया था संजय निरुपम, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह दी है,
तो उससे तो बहुमत नहीं आएगा शिवसेना का।
114 सीटें तब जरूरी होती है जब 227 के सभी लोग हाउस में मौजूद हों। तो यूं समझे उस दिन अगर 227 में से 10-12 लोग कम आ जाएं किसी कारण से, ठीक है
जी,
एब्सेंट कर ले, यानी कम से कम 210 आएंगे। अब 210 अगर मौजूद रहते हैं, यानी आपको 114 की नहीं 105 की जरूरत रहती है। जो भी इन दोनों घोड़ों में से पे बेट लगाएगा वो अपनी जरूर सोचेगा पहले, और अपनी सोचने में उसका फायदा लंबी रेस के घोड़े पर ही लगाने में ज्यादा है।
जी, बीजेपी शिवसेना के रिश्ते किस मोड़ पर हैं बता रहे हैं शिशिर जोशी बता रहे थे। और आज दिल्ली के अखबारों से क्या कुछ छपा है बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। क्या खबर है दिलनवाज
जी? वात्सल्य, अमेरिका में जो भारतीय इंजीनियर की हत्या हुई है, सभी भारतीय अखबार उसे हेट क्राइम यानी नफरत से प्रेरित हिंसा बता रहे हैं। लगभग सभी अखबारों ने एक जैसी सुर्खी लगाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चुनावी रैली में दिया गया बयान भी अखबारों में सुर्खियों में है। मोदी ने कहा है रेल हादसों में पाकिस्तान का हाथ। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि जो इसकी जांच है वो अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जिक्र करेंगे अमर उजाला की एक खास खबर का, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कागज पर बना 4-लेन हाईवे हड़पे 455 करोड़ रुपए। ये अमर उजाला की ये खबर है। ये खबर सिर्फ आज के अमर उजाला में ही है। और एक तस्वीर दिखाई है कि जिस 4-लेन को बना हुआ दिखाया है ये उसकी हालत, और हालत देखकर ये बताया जा सकता है कि अभी वो 4-लेन हाईवे बिल्कुल भी नहीं बना है। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक ईपीएफ पूरा करेगा घर का सपना, यानी अब जिन लोगों का ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में खाता है वो ईपीएफ के जरिए मकान की ईएमआई दे सकते हैं। ऐसी योजना सरकार जल्द ही लेकर आ रही है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुड़गांव में एक कॉल सेंटर के से सीक्रेट पासवर्ड से ठगी का गोरख धंधा चल रहा था। लोगों को फ़ोन करके उनसे ओटीपी और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे जो सीवीवी नंबर होता है वो लेकर के ठगी की जा रही थी, और इसके लिए बकायदा पूरी टीम नियुक्त की गई थी।
इस तरह के मामले आजकल बहुत सामने आ रहे हैं। शुक्रिया दिलनवाज। और अब वक्त है उस खास पेशकश का जिसका आपको पूरे हफ्ते इंतजार रहता है, यानी विवेचना। चाहे उसकी लंबी लंबी हैंडल बार मूछें हों या उसका दो दो राज्यों की पुलिस को 20 सालों तक लगातार चैन से न बैठने देना हो, लोग अभी भी चंदन तस्कर वीरप्पन को भूल नहीं पाए हैं। वीरप्पन पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था। हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के विजय कुमार की किताब प्रकाशित हुई है, वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगांड, जिसमें उन्होंने वीरप्पन के बचपन से लेकर डाकू बनने और उसके अंत होने की कहानी को दिलचस्प ढंग से बयान किया है। विवेचना में रेहान फजल बता रहे हैं वीरप्पन के उदय और अंत की कहानी।
पल्लायर कण पोय पेसुवांग
ये आवाज है कूसे मुनिया स्वामी वीरप्पन की, जो एक जमाने में भारत का मोस्ट वांटेड मैन हुआ करता था। उसने 20 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया, जिस पर 2000 से अधिक हाथियों और करीब 184 लोगों को जान से मारने का आरोप था, और जिसके सिर पर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का इनाम रखा गया था। भारतीय अपराध जगत में दाऊद इब्राहिम को छोड़कर इतना बड़ा इनाम किसी के सिर पर नहीं रखा गया। 18 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उम्र में पहली बार एक हाथी का शिकार किया था। हाथी को मारने की उसकी फेवरेट तकनीक होती थी उसके माथे के बीचों बीच गोली मारना। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगांड के लेखक और वीरप्पन को मारने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख के विजय कुमार बताते हैं।
इनके पास टैलेंट भी था और स्किल भी था। वहाँ कई लोगों के पास बंदूक बहुत नॉर्मल चीज है, जस्ट लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस इज नॉर्मल थिंग। एज अ बॉय ही वॉज वेरी गुड शार्प शूटर। सो धीरे धीरे एक जेवी काउंटर एक आदमी थे, वो आइवरी डीलर थे, उन्होंने अपना कंट्रोल में इनको लिया है। हाथी का ट्रंक है ना, वो दैट इज यूज्ड एज अ नोज टू स्मेल। हाथी विल पुट द ट्रंक पीछे और आगे टू स्मेल द ह्यूमन बीइंग। सो ही विल वॉच द विंड डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंगली गो वेरी क्लोज एंड शूट। ही वॉज अ वेरी स्किल्ड शूटर एंड दैट ही कंटिन्यूड टिल द एंड। सारे एम्बुश में बहुत अच्छी तरह प्लान करते थे। शुरू में उनके पास केवल वो बर्मा टाइप का मजल लोडर और ऑर्डनरी वेपन्स थे उनके पास, है हमारा पास SLR और 303 पुलिस के पास। फिर भी वो बैकवर्ड और इतना प्रिमिटिव वेपन के साथ उनका एम्बुश बहुत इफेक्टिव था।
वीरप्पन की खूंखारियत का आलम यह था कि एक बार उसने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास का सिर काटकर उससे अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेली थी। आपने क्रूरता के बहुत से उदाहरण सुने होंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि किसी लुटेरे या डाकू ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी की बलि चढ़ा दी हो, उसके रोने की आवाज से उसके ठिकाने का पता न चल जाए। वीरप्पन ने कुछ महीनों की अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया।
उसमें केवल वीरप्पन का वाइफ मना किया, वो बहुत अफेक्टेड थे इस इंसिडेंट में। जब बच्चे रोते हैं, वो अंग्रेज में कहते हैं वो साउंड का डेसिबल, ये करीब 110 का डेसिबल है। थंडर क्लैप इज 120, केवल इससे 10 डेसिबल ज़्यादा। आप सोच सकते हैं ये जंगल के अंदर अगर बच्चे का 110 डेसिबल का आवाज़ करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक एक को कर सकते हैं। सो उस वक्त हमारा एक बहुत फेमस ऑफिसर थे संजय अरोरा, STF का, तमिलनाडु STF, पीछे ये तो इनके साथ करीब 100 आदमी थे, औरतों भी थे, बच्चे भी थे और बाकी लोग भी, नौजवान भी थे और बुजुर्गों भी थे। ये इतना बड़ा मुगल आर्मी जैसे उतना टेल के साथ वो जा रहे थे, इसलिए इनको थोड़ा डर आ गया कि अगर ये टाइप का बच्चे का बिहेवियर हो गया तो, क्योंकि पता नहीं सकता कब बच्चे रोने वाला है, कोई अलार्म को कोई एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने, एक बार ये हो गया था, लोग इधर उधर देख रहे थे बाकी लोग, सो वीरप्पन ने आदेश दिया एक मिडवाइफ, मतलब एक चिन्नप्पु लेकर के एक मिडवाइफ, मतलब जो पहले इनका डिलीवरी वगैरह मदद किया वो, उनके तरफ देखे उन्होंने इशारा दिया। सो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, सो दिस हैपन। ये आने के बाद ये नहीं है कि बाकी इंडिया में भी कहीं जहाँ में हमने इन्फेंटिसाइड के बारे में सुना है, लेकिन ये इंसिडेंट प्योरली टैक्टिकल डिसीजन उन्होंने किया, अपना बेबी को भी सैक्रिफाइस करने तैयार है जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ।
सन 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। 100 से अधिक दिनों तक राजकुमार वीरप्पन के चंगुल में रहे। इस दौरान उसने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य सरकारों को घुटनों पर ला दिया। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री SM कृष्णा बोले,
Veerappan has said that we should go to the International Court of Justice for settling Kaveri dispute. We have said no. Veerappan said that Tamil should be the second language of Karnataka. We have said no.
June 2001, दिन में 11 बजे वरिष्ठ IPS अधिकारी के विजय कुमार के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ अम्मा। उन्होंने जयललिता के फोन को अम्मा के नाम से फीड कर रखा था। जयललिता सीधे पॉइंट पर आई।
हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बना रहे हैं। इस चंदन तस्कर की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आपको आपके ऑर्डर्स कल तक मिल जाएंगे।
STF का प्रमुख बनते ही के विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जमा करना शुरू कर दिया। पता चला कि वीरप्पन की आंख में तकलीफ है। अपनी मूंछों में रंग लगाते समय उसकी कुछ बूंदे छिटक कर वीरप्पन की आंख में जा गिरी थी।
वीरप्पन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंडिंग ऑडियो टेप्स और विजुअल टेप्स। एक बार उन्होंने 9 घंटे का इंटरव्यू भी दिया TV को। बीच में कई बार उन्होंने ऑडियो टेप्स गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए और अपना फैमिली के लिए, वो टाइप का आदत उनके पास था। उस एक टेप के अंदर, ऑडियो विजुअल टेप में, वो कुछ पढ़ने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें लग रहा था थोड़ा हाइस में स्ट्रेन है।
वीरप्पन के लिए जाल बिछाया गया कि उसको आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर लाया जाएगा। उसके लिए खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया जिस पर लिखा था SKS हॉस्पिटल सेलम। उस एम्बुलेंस में STF के 2 लोग पहले से ही बैठे थे, इंस्पेक्टर वेल्लई दुरई और ड्राइवर सर्वनन। वीरप्पन ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और पहचाने जाने से बचने के लिए उसने अपनी मशहूर हैंडलबार मूछें छोटी कर रखी थी। पूर्व निर्धारित स्थान पर ड्राइवर सर्वनन ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह से गिर गए।
बहुत स्पीड से आ रहे थे, अचानक ब्रेक मारा, तब ब्रेक मारे वहां से धुआं आया, वहां से स्मोक एंड स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम द टायर। वो जैसे एयरक्राफ्ट का होता है ना, वो टाइप का था। जहां पे हमारा पार्किंग लॉट हमने मार्क किए थे एग्जैक्टली देयर, एक यार्ड का भी फर्क नहीं था। उन्होंने तीन लाइट को भी ऑन कर दिया, लेकिन वो लाइट भी बंद करना था ऊपर वाला, और फॉग लैम्प वो भूल गया था, मतलब वो टेंशन में वो नीचे आ गया था। ही केम रनिंग टू मी, दुराई जम्प्ड आउट। दैट 2 seconds was the most important of my decision. अगर वार्निंग करने के पहले अगर एक सेकेंड का भी कोई गलती हो गया, हम आप सोच लीजिए 30 आदमी का गन्स उनके ऊपर है। हमारा गन का स्पीड आप जानते होंगे कि 600 rounds per minute, मतलब हर एक सेकेंड का 10 round एक है। अगर मान लीजिए अगर 30 आदमी में केवल 10 आदमी ओपन कर लिया, 10 × 10 in 1 second, 100 rounds in 1 second, वेरी डेंजरस। Luckily, that was perfect.
रुकते ही ड्राइवर और वेले दुरई बाहर भागे। मेगाफोन पर आवाज गूंजी, वीरप्पन तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
वार्निंग के बाद फर्स्ट फायर केम फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम इनसाइड, गाड़ी के पीछे तरफ से। और बाद में हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है कैसा क्या किसने किया होगा, क्योंकि वीरप्पन का पोजीशन फेसिंग द ड्राइवर टुवर्ड दैट साइड, दिस लास्ट सीट वॉज साइड सीट फेसिंग द साइड। सो फर्स्ट राउंड केम फ्रॉम हियर एंड द साउंड ऑफ द राउंड वॉज समथिंग लाइक AK-47। सो इन रिकन्स्ट्रक्शन इट लुक्स लाइक गोविंदन का फायर था पहले, उसके बाद फिर हमने दोबारा वार्निंग किया, फिर शुरू कर दिया। टोटल पीरियड इज नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स, इसलिए मैंने कहा 20 साल का हंट 20 मिनट का अंदर कम्प्लीटली खत्म हो गया।
कुल 338 राउंड चलाए गए। आश्चर्य की बात है कि वीरप्पन को इनमें से सिर्फ 2 गोलियां ही लगी। 60 के दशक में जब फ्रांस के राष्ट्रपति द गाल की कार पर 140 गोलियां बरसाई गई थीं, तो उनमें से सिर्फ 7 ही उनकी कार पर लगी थीं। मैंने विजय कुमार से पूछा कि गोलीबारी के बाद जब आप एम्बुलेंस में घुसे तो क्या वीरप्पन जिंदा था?
तो वेरी लिटिल ब्रीथिंग वॉज देयर, आई कुड सी दैट ही वाज स्ट्रगलिंग। उनको ओनली 2 bullets had hit him. One bullet was in the face and it must have hit the nerve in the back, which connects to the optic nerve or something. So when sensitive parts are hit, life will be normally switched off very fast. He had very little life, I think. So, but we still send him to the hospital.
इसके बाद STF का पूरा दल एक तरह से सकते में आ गया। ये सिंक इन होने में थोड़ा वक्त लगा कि उन्होंने वीरप्पन को खत्म कर दिया है। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, विजय कुमार को उनके दल ने कंधों पर उठा लिया। इसके बाद कानन और दुराई को भी कंधों पर उठाकर उछाला गया। विजय कुमार तेज कदमों से स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर छज्जे पर जा पहुंचे। वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री जयललिता को फोन लगाया। उनकी सचिव शीला बालाकृष्णन ने फोन उठाया, बोली मैडम तो सोने के लिए चली गई हैं। विजय कुमार ने कहा मैं जो उनको बताऊंगा उसे सुनकर वो खुश होंगी। फोन काटने के बाद विजय कुमार अपनी जीप की तरफ बढ़े। उन्होंने एम्बुलेंस पर आखिरी नजर डाली, उसकी छत पर लगी नीली बत्ती अभी भी घूम रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस पर एक भी गोली नहीं लगी थी। अंततः उसे स्विच ऑफ किया गया। बुझी हुई बत्ती मानो कह रही थी मिशन एकम्प्लिश्ड। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
वीरप्पन पर पूरी विवेचना आप सुन सकते हैं bbchindi.com पर। बीबीसी की वेबसाइट पर एक और दिलचस्प खबर है आईएनएस विराट के बारे में, जो दुनिया का सबसे पुराना विमान वाहक जहाज है और 6 मार्च को आधिकारिक तौर पर रिटायर हो रहा है। सुबह के 7 बजने वाले हैं और कार्यक्रम की समाप्ति के पहले सुनते हैं एक बार फिर मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
ट्रंप प्रशासन ने कैंसस राज्य में भारतीय इंजीनियर की मौत पर बयान देते हुए कहा है कि कोई भी मौत दुखद होती है, लेकिन इस हमले को ट्रंप के बयानों से जोड़ना हास्यास्पद है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित दीवार के डिजाइन और निर्माण के लिए अगले महीने से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस वार्ता से बीबीसी समेत कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को बाहर किया गया है। फ्रांस में अभियोजकों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फिलोन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच आगे बढ़ा दी है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग किया दीपक जसरोटिया ने। सभी साथियों के साथ वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।